आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के सिक्योरिटी हालात और सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका हवाई जहाज 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका जेट बाजाब्ता तौर पर बनाने से कबल इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार करेगा। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में 900 गैर कानूनी बांग्लादेशियों का पता लगाया है, जिन्हें तस्दीक के बाद वापस भेजा जाएगा। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप की जानिब से आयद किए गए महसूलात को रद्द किए जाने के एक दिन बाद उन्हें आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। बिहार में जनाब मोदी आज सुबह रोहतास जिले में बिक्रमगंज के मकाम पर 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
जनाब मोदी बिहार के लिए सड़क और रेल राबतों के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम कौमी शाहरा नंबर 22 के 4 लेन वाले पटना गया धोबी सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे, जो तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए मालियत का प्रोजेक्ट है। और कौमी शाहरा नंबर 27 पर गोपालगंज टाउन में 4 लेन वाली शाहरा का हिस्सा है। पटना गया धोबी शाहरा से पटना और विरासती शहर गया के दरमियान सड़क राबता बेहतर हो सकेगा। वजीर आजम सोन नगर मोहम्मदगंज के दरमियान तीसरी रेल लाइन मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 1,330 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का प्रोजेक्ट है। जनाब मोदी बिक्रमगंज में एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां वजीर आजम का यह पहला अवामी जलसा होगा। बिक्रमगंज से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
उत्तर प्रदेश में वजीर आजम आज दोपहर कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते के बुनियादी ढांचे और राबतों को फरोग देना है। जनाब मोदी ज़राअत और टेक्नोलॉजी की चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर एक जलसा आम से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
कानपुर के अपने दौरे में जनाब मोदी कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक के सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे, जिस पर 2,120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। इसके अलावा वजीर आजम 660 मेगावाट के पनकी हरारती बिजली तोसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिस पर 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। इससे उत्तर प्रदेश की तवानाई की सलाहियत में इजाफा होगा। वजीर आजम घाटमपुर हरारती बिजली प्रोजेक्ट के 660 मेगावाट के 3 यूनिटों का आगाज भी करेंगे, जिन पर 9,330 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। इससे बिजली की फराहमी में नुमाया इजाफा हो सकेगा। जनाब मोदी शहरी खदमात से मुतालिक कई दीगर प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। वजीर आजम आयुष्मान व्यय वंदना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मुस्तफीद होने वाले अफराद को सर्टिफिकेट और चेक भी तकसीम करेंगे। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान।
किसानों और साइंसदानों के दरमियान बराह रास्त राबते की खातिर एक स्कीम कल ओडिशा में शुरू की गई है, जिसे विकसित कृषि संकल्प अभियान का नाम दिया गया है। एक वीडियो पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की समत भारत के सफर में ज़रई शोबे के अहम रोल को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार इस शोबे को दरपेश कई चैलेंजों को दूर करने के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रही है। इनमें किसानों की फसलों की पैदावार के लिए मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाना और मजमूई ज़रई मईशत को फरोग देना है।
एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्विफ्ट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा से ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है उससे कैसे एनर्जी बनाए, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल रात जम्मू में आला सतह की मीटिंग की सदारत की। जनाब अमित शाह ने सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा भी लिया। उन्होंने यात्रा के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी इकदाम की जानकारी दी गई। जनाब अमित शाह मरकज के जेर इंतजाम इलाके के दो दिन के दौरे पर कल शाम जम्मू पहुंचे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
इस मीटिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई और 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब अमित शाह आज पुंछ जाएंगे और पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासिर होने वाले अफराद से मिलेंगे और नुकसानात का बरसरे मौका जायजा लेंगे। जनाब अमित शाह पुंछ शहर में खानेतर के मकाम पर बीएसएफ जवानों से खिताब भी करेंगे। वो पाकिस्तान की गोलाबारी में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को तकरूर नामे भी तकसीम करेंगे। जनाब अमित शाह उन मजहबी मकामात को देखने भी जाएंगे जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने निशाना बनाया था और गोलाबारी में उन्हें नुकसान पहुंचा है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका हवाई जहाज 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका जेट बाजाब्ता तौर पर बनाने से पहले इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार करने का मंसूबा बना रहा है। नई दिल्ली में सीआईआई बिजनेस समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हमारी कौमी सिक्योरिटी में एक लाजमी अंसर है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मौसर कार्रवाई में इसका अहम रोल रहा। वज्र दिफा ने जोर देकर कहा कि जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका तैयारे के मॉडल के जरिए प्राइवेट सेक्टर को पहली मर्तबा सरकारी मिल्कियत की कंपनियों के साथ बड़े दिफाई प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा।
रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस एमका प्रोजेक्ट को जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कौमी राजधानी में गैर कानूनी तौर पर रह रहे तकरीबन 900 बांग्लादेशी बाशिंदों की निशानदेही की गई है और उनकी मुनासिब तौर पर तस्दीक किए जाने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र बगैर जरूरी कागजात वाले माइग्रेंट अफराद को वापस भेजे जाने के अमल में तेजी आ गई है। गुज़श्ता 6 महीनों में दिल्ली में तकरीबन 700 बगैर जरूरी कागजात वाले माइग्रेंट अफराद को भारतीय हुकूमत की जारी वापस भेजो हिकमत अमली के तहत बांग्लादेश वापस भेजा गया है।
जो अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी यहाँ पे उनके खिलाफ हम लोग सारे जो फील्ड यूनिट्स हैं और जो स्पेशलाइज यूनिट्स हैं क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल सभी लोग कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें उनको डिटेन किया गया है क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके अलावा जो लोग इनकी मदद करते हैं और इनको अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के ठोस और पुख्ता अज़्म की अक्कासी करते हुए 7 कसीर जमाती पार्लिमानी वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के अपने दौरे में आला सतह पर बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क्यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंच गया है। मीडिया से बातचीत में जनाब थरूर ने कहा कि दहशतगर्दों को भेजने वालों और उन्हें रोकने वालों के दरमियान कोई बराबरी नहीं हो सकती।
There was a well publicized funeral one of the terrorists on the sanctions list, and you will be interested to see that funeral was attended by uniformed senior military and police personnel from Pakistan. That is the extent of complicity that we are seeing between the terrorists who perpetrate crimes of this nature and those who finance, guide, train, arm and equip them and who provide them safe haven to continue their training and their other awful deeds.
این سی پی شرد پوار گروپ کی ممبر پارلیمنٹ سپریا سلے کی سربراہی میں ایک اور وفد نے جنوبی افریقہ کا اپنا سفارتی دورہ مکمل کر لیا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں, ملک بھارتی فوجیوں کی شجاعت کو سلام پیش کر رہا ہے. مسلح افواج کو خراج تحسین کے طور پر آکاش فرنی نیوز نے ایک خصوصی سیریز شروع کی ہے. آج ہم پرمویر چکر حاصل کر چکے کیپٹن گربچن سنگھ سلاریا کو یاد کریں گے جو کانگو میں بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ قیام امن فوج کا حصہ تھے.
پنجاب کے گرداس پور میں 1935 میں پیدا ہوئے کیپٹن گربچن سنگھ سلاریا 1957 میں ون گورکھا رائفلز میں شامل ہوئے. کیپٹن سلاریا کانگو میں اقوام متحدہ کی قیام امن فوج میں بھارتی دستے میں شامل تھے اور انہوں نے دسمبر 1961 میں ایک اہم کارروائی کے دوران غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا. 5 دسمبر کو کیپٹن سلاریا الیزابیتھ ویلے ہوائی اڈے کے نزدیک پوزیشن کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پلاٹون کی قیادت کر رہے تھے, جہاں کٹنگیز فوجیوں نے 2 بختربند گاڑیوں اور تقریباً 90 اہلکاروں کے ساتھ پوزیشن مضبوط کر رکھی تھی. دشمن کے مضبوط ہونے کے باوجود کیپٹن سلاریا نے سیدھا حملہ بولا اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کے 40 فوجیوں کو ہلاک کر دیا, بکتر بند گاڑیوں کو تباہ کیا اور باقیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. دشمن کی گولی باری میں شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سلاریا آخر تک لڑے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. ان کی فیصلہ کن کاروائی سے الیزابیتھ ویلے میں اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر کو گھیرا جانا ناکام ہو گیا. کیپٹن سلاریا کی غیر معمولی بہادری اور قائدانہ رول کے لیے انہیں بعد از مرگ پرم ویر چکر سے سرفراز کیا گیا. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن.
امریکہ میں اپیلوں سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے محصولات کو بحال کر دیا ہے. ایک دن پہلے ہی تجارتی امور سے متعلق ایک عدالت نے ان محصولات پر فوری طور سے روک لگا دی تھی. پرسار بھارتی شیئرڈ آڈیو ویژولز فار براڈ کاسٹ اینڈ ڈسمینیشن پی بی شبد نے اپنی مفت خدمات کے اندراج کے لیے یوٹیوبرز, پوڈ کاسٹرس اور ویڈیو ایڈیٹرس کو مدعو کیا ہے. پی بی شبد ایک ایسا وسیلہ ہے جہاں کاپی رائٹ کی ضرورت نہیں اور معتبر اور محفوظ متن موجود ہے. آئی پی ایل T20 کرکٹ میں کل رات چنڈی گڑھ کے ملان پور میں پہلے کوالیفائر میں رائل چیلنجرز بنگلور پنجاب کنگز کو 8 وکٹ سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. پنجاب کی جانب سے آر سی بی کو 102 رن کا معمولی نشانہ ملا تھا جسے اس نے 10 اوورز میں ہی حاصل کر لیا. پہلے کوالیفائر کے بعد اب سب کی نگاہیں ایلیمینیٹر پر ہیں جہاں آج ممبئی انڈینز کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب.
شکریہ ارجمن. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال اور بہار دورے سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے, ہم وکست بھارت کی راہ پر گامزن, مغربی بنگال کی ترقی بھارت کے مستقبل کی بنیاد. روزنامہ انقلاب لکھتا ہے کہ آپریشن سندور کے بعد وزیر اعظم کا پٹنہ روڈ شو, جے پرکاش نارائن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل کا افتتاح. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو اخباروں نے صفحہ اول پر نمایاں طور سے شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے, وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہوگا, وزیر دفاع کا پاکستان کو انتباہ, کہا ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے سپریم کورٹ کے لیے 3 ججوں کی تقرری کی خبر کو صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. عالمی خبروں کے صفحے کی کچھ اہم سرخیاں اس طرح ہیں, ایلن مسک نے امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا.
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار اور اتر پردیش میں 96,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کے سیکیورٹی حالات اور سالانہ امرناتھ یاترا کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت جدید طرز کے میڈیم لڑاکا ہوائی جہاز پانچویں سلسلے کے سٹیلتھ لڑاکا جیٹ باضابطہ طور پر بنانے سے پہلے اس کے پانچ پروٹوٹائپ تیار کرے گا۔ دلی پولیس نے قومی راجدھانی میں 900 غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کا پتہ لگایا ہے جنہیں تصدیق کے بعد واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائل چیلنجرز بنگلور کی ٹیم پہلے کوالیفائر میں پنجاب کنگز کو 8 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔